and Govinda is said in Vrindavan, Vrindavan, Govinda Devi, and all other deities there. Radha Damodar and all the Radha Devi, Govinda Devi. Radha Madhava is said in Vrindavan. Madan Mohan is in the sea afterwards. So all Devi is said here one day. And next day, as an instructor of Jayati. Gopal, Madan Gopal, went to Udaipur, but in the way there is a place he and light Vrindavan is stayed there. And that is called Nathadwar. And Govinda Gopinath is stayed in Jaipur. Madan Mohan with the daughter of Jaipur Naresh, he went to Karoli. Now he is in Karoli. So all this is taken to this Rajasthan. So here he is in Govinda Dev, there Gopinath here, Madan Mohan is in the all the cities is here. So from that time, the Pratibhu Vigra of them, Pratibhu Vigra Mane Nesati, represented Vigra News to you. There are so many stories I will tell further express the district in Vimlapam, and because it will be so late and it will be so hot, now we should advance over Chandpahar. And from then coming, if the time will be, then we will go to Vrindavan, otherwise we will go to Vimla Sundar, and we will take to Sadhan there and rest for today. In evening we will see some. But see, the water of Vimla Sundar is so pure, but so heavy. Anyone can be sick if they will take bath there. So see that if you can wear that water, then you should take bath there. Otherwise, to take it in our head and do asana. Otherwise, it will be fearful to be sick. So you should be careful. Now we should go to Chandpahar. Follow Govinda Deva ki
jai.
श्याम सुंदर ने बंसी बजाया ये स्थान है। ये काम भगवान अभी महाराज जी ने व्याख्या की थी। काम भगवान मैने काम श्री भग महात्म्य अमर कोश में कहा है। काम श्री भग महात्म्य, काम मैने श्री, भग मैने सौंदर्य ऐश्वर्य बीज जल श्री ज्ञान वैराग्य और महत्व माने महिमा में ये सब प्रकार से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। काम्या काम्बोवरम अर्थात कृष्ण के सौंदर्य का सर्वोत्तम रूप से विकास यहीं पर हुआ था, जो कि त्रिभंग ललित मुरली मनोहर श्याम सुंदर के रूप सौंदर्य का अद्भुत प्रकाश। इस प्रकार श्री महात्मे ये भाई श्री महात्मे ऐश्वर्य वीर्य ज्ञान वैराग्य आदि सब कुछ यहीं पर प्रकाशित हुआ, जैसे रासलीला आदि में हुआ है। इसी प्रकार महिमा में कृष्ण की समस्त लीलाओं में सर्वश्रेष्ठ रास लीला है, इसलिए इस काम वन को 84 कोष ब्रजमंडल के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ स्थान मानते हैं, और संप्रदाय के लोग इसको वृंदावन भी माना करते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत में पौगंड लीला में वर्णन है, सेतु बंध नीला अणय मरकटो प्लवनाद भी। सेतु बंध नीला अणय पासी में सेतु बंध रामेश्वर है, जो कि गोपियों को एक नदी के ऊपर झील के ऊपर में सेतु बंध समुद्र बंधन करके दिखाया था, और मरकटो प्लवनाद भी। उस प्लवन कूदना भागना बंदर जैसे एक से उस पहाड़ी तक ऐसे कूद करके जाना आना, इस तरह से उस प्लवन और यहाँ पर लुक लुकी कुंड है। बाकी ने अभी जो महाराज जी ने बताया था लुकाछिपी कुंड है, यहाँ पर लुकाछिपी खेल में पानी में
It's important because Krishna played our flute here, and when he was playing our flute, then stone started melting, and his feet got symbolized over there. We can see the great of his feet just because stone melted because of his playing our flute. So it's very important place, Shivananda Prabhu says. It comes under Kami One, and Kami One, as Mahavaya explained, means it's full of so many leelas, Mahima Yukt leelas. Mahima Yukt means where Krishna's very topmost leelas have taken place, and according to Mahima Yukt, Mahima Yukt, Mahima Mai, and according to Bhagavatam, this place may be called as Vrindavan also, because according to Bhagavatam, in Vrindavan there is a place where Krishna played the role of Ram. He made a bridge of stone, it's nearby, he says it's quite nearby, and he played like monkey also. He says he and his friends, they jumped from one peak of the hills to the another peak of the hill, just like monkey, and they showed their this place to gopis. So it's a very interesting place. Now we are going to Vimla Kund and take bath there with restriction. Maharaja has put some restriction also there. He says that we have to see whether we don't lose our physical condition. It's nice to take bath as well as it is dangerous to take bath. Hare Krishna.
Now you should all go to
पति को हरने वाला आघत ये यशोदा मैया जी का इधर है। यशोदा जी की बहुत सी बहनें थी। यशोदा जी के पिताजी
मेहराने गांव के थे बाबा। मेहरान गांव इंद्राम की बाजू में है।
तो यहाँ पर कैसे आए?
यहाँ पर तो गोकुल को छोड़ करके इसमें आकर के यहाँ राधिका जी की आन लगी हुई थी। भगवान जी का राज था यहाँ। भगवान जी के राज में राधिका जी की आन लगी हुई थी। अगर कम जिसमें आएगा तो गोकुल छोड़ करके यहाँ आके बसे थे।
तो ये यशोदा जी का घर है।
यशोदा जी का स्थान है। यशोदा जी को दे दिया
यहाँ पर। कृष्ण अपने मैया के साथ में यहाँ पर थे।
कामबन महात्म प्रथम अध्याय में वर्णन है। प्रथम अध्याय से लेकर के चौबीस अध्याय तक वर्णन है कामबन महात्म को। और वहाँ में ये लेख है कि वहाँ समय कृष्ण को छह दिन की छठी पूजी गोकुल में और साथ में जो है यशोदा मैया नंद बाबा कृष्ण को लेकर के बलराम को लेकर के वृंदावन में जो आए वहाँ समय को वृंदावन वहाँ में या को लिखो कामबन को आज वृंदावन
ऐसा तो लिखा है भागवत में। और दूसरी जगह
सुनो तीन बरस छह महीना तक गोकुल से कहीं बाहर जाएंगे।
तो कई अनेक ग्रंथ अनेक अनेक जन्म में अनेक भगवान के अनेक अवतार
सही बोल रहा है।
यहाँ पर यशोदा जी का शिहर था। बचपन में यहाँ पर खेले। हाँ, सबसे पहले वो
बुलाते थे
उनके पिताजी नंदगांव में और वो बरसाने में रहते थे। विश्वानु महाराज उनको बाल बच्चा नहीं था। उनको लड़की भी नहीं थी। कृष्ण माने अभी कृष्ण तो पैदा नहीं है। जब प्रौढ़ावस्था में हो गए तभी उनको पुत्र नहीं था। तो उनके पिताजी ने परजन्य जी ने तपस्या की आपेश्वर महादेव के यहाँ। ये तो लिखा है किंतु रूप गोस्वामी ने लिखा है ये नारायण की उपासना है। परजन्य बाबा ने
परजन्य बाबा यशोदा जी के पिताजी
नंद बाबा। तो वहीं पर वरदान उनको हुआ है जिससे आपको लड़का होगा आपको नाती होगा और विश्व में सबसे प्रसिद्ध आदमी होगा। लोग को तारण तारण करने वाला होगा। केसी दैत्य के अत्याचार से वो लोग गोकुल महाबन में आ गए। तो विश्वभानु महाराज जी वहाँ रावल में चले गए। रावल ही ना रावल में चले गए। और फिर वहाँ से छठी कर आए तो वो राल में चले गए। फिर वहाँ से धीरे 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 इधर में आए कामेबन में आए। बचपन का बाल्य अवस्था का कुछ दिन यहाँ पर बिताए पौगंड इत्यादि। और यहीं पर वो लुकलुकी इत्यादि जो लीलाएं हैं और भोजन थाली की लीला है और जहाँ हम लोग गए थे वो सब लीलाएं यहाँ पर भी। गोकुल में नहीं होता जहाँ पर गोपियाँ इत्यादि सभी रहते हैं। इसलिए गोकुल महाबन में था। फिर वहाँ से धीरे धीरे गाड़ियों पर अपना सब सामान लाद लोड करके फिर एक जगह से दूसरी जगह तीसरी जगह चौथी जगह इस तरह से वो लोग घूमते रहते थे। जहाँ पर घास की बहुलता होती थी वहीं पर गायें रहती थी वो लोग रहते थे। दूध दही ही उनका मुख्य रूप से ये था खाना पीना सब कुछ। तो इस तरह से यहाँ आए। फिर शेरगढ़ में भी है खेलन बन में वहाँ पर स्थान है उनका। फिर वहाँ से नंदगांव में फिर आए। दो चार बार ऐसे घूमते रहे होंगे। तो यहाँ पर यहाँ की लीला यशोदा जी अपने पिहर में अपनी थी। उनकी बहनें थे भाई लोग भी थे। तो यहाँ के बाद में तो फिर वो लोग चले गए होंगे वहाँ नंदगांव इत्यादि में। तो यहाँ रहते हुए जो लीलाएं हैं उसी का हम लोग देख रहे हैं। यहाँ यहाँ से हम लोग चलेंगे रामेश्वर जहाँ पर की गोपियाँ कृष्ण से अनुरोध किया जाए, यदि आप ही भगवान राम हैं तो बंदरों से ये सब कुल बनवा दीजिए, चलो देखेंगे। एकदम से रामेश्वर जैसा ही, रामेश्वर की भी स्थापना हुआ है उस पार में, लंका मानी जाती है, और बंदरों ने वहाँ पर पुल बांध दिया, कैसे वहाँ पर बनना। यहाँ स्थान को यही, वो प्राचीन जो स्थान है ना, समय के अनुसार में बदलते हैं। कभी ये यशोदा जी का ये मुख्य स्थान होगा, पीछे से यहाँ के लोग शक्त हो गए, कुछ समझा नहीं, और देख रहे हो पीछे वो सब जितनी टूटी फूटी हुई मूर्तियाँ हैं, वो देवी की उपासना लोग करने लगे। कहीं भी देवी की उपासना की बात यशोदा के द्वारा, नंद बाबा के द्वारा नहीं देखी जाती, बल्कि नारायण की देखी जाती है। उनके गृह देवता भी नारायण थे, तो होना तो चाहिए यही, किंतु पीछे से मूर्ति कोई चुरा ले गए, चुराने के बाद में फिर दूसरे लोगों ने इसको दखल करके फिर देवी का कोई रख दिया। अब वो कहते हैं कि ये देवी उनकी कुल देवी, कुल देवता। इसी तरह से सर्वत्र ब्रज में यह ऐसा है, किंतु है ये यशोदा जी का। यहाँ पर कुंड एक था, उनको यशोदा कुंड कहते हैं। इधर में था,
यहाँ था, हमने देखा था, बना हुआ अभी तक था, पाँच चार वर्ष पहले तक
कुंड था। अब वो धीरे धीरे पतला जाता, अब खेत बनते जाते हैं, तब कटते जा रहे हैं। अब यही ध्यान में रखिए, जैसे यहाँ पर यशोदा जी का स्थान था और यहाँ यशोदा जी का कुंड था, कृष्ण की यहाँ पर बहुत सी लीलाएं हुई होंगी, इस स्थान को प्रणाम करके हम लोग गौ प्रमाण। ये है गुरु वैष्णवों के अनुगत्य में परिक्रमा करते करते यहाँ सेतु बंदर रामेश्वर पर पहुंचे। तो ब्रज में सेतु बंदर रामेश्वर सुनने से कैसा लगता है, जो कि दक्षिण भारत में और दक्षिण समुद्र के तटवर्ती सेतु बंदर रामेश्वर जो प्रसिद्ध है, और यहाँ पर सेतु बंदर रामेश्वर, केदार बद्री, बद्रीनाथ, ये सब कहाँ से आ गए, कैसे आए? एक समय ब्रज गोपियों ने कृष्ण से कहा कि सुना है आपने रामलीला में सेतु बंध किया था, समुद्र का बंधन किया था, समुद्र के ऊपर में पुल बांध करके बन रही सेना की सहायता से लंका पर विजय किया, तो इतने बड़े समुद्र को कैसे बांधा था, उसका कोई प्रमाण है या ऐसे झूठ मूठ के बेकार की बातें? बोले कि नहीं, वास्तविक है। तो यदि वास्तविक है, समुद्र को बांधा गया था, तो यहाँ कुछ बांध करके तो दिखा दे कि आपने समुद्र बंधन किया था रामलीला में। तो गोपियों ने जैसे कहा, कृष्ण ने कहा अच्छा अभी दिखाता, अभी अभी आप लोग देखते हुए आए यहाँ पर, ये ऊंचा टीला सा जमीन और इसके नीचे जो ये निचला भाग है और इसके बीच में कुछ पत्थर पड़े हुए, ये सब पत्थर यहाँ कैसे कैसे आ गए, इतने बड़े बड़े चट्टान, ना कोई पहाड़ है ना कुछ है। तो ये कृष्ण ने इच्छा मात्र ही गोपियों को दिखा दिया कि उनके इच्छा मात्र ही कहाँ से बंद सेना आई और आ करके एकदम पत्थर धर दिए और पानी के ऊपर ये पत्थर तैरने लगे, इस तरह से पुल बंधा हुआ है। श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव गोस्वामी बात कहते हैं, जबकि ब्रह्म मोहन लीला समाप्त हुई, पौगंड लीला के अंत में कहा है कि सेतु बंध नीलायन मर्कटोत्प्लवना देवी। ब्रज गोपियों को जिन्होंने सेतु बंध की लीला दर्शन कराई, ऐसे कृष्ण ने यहाँ पर सेतु बंध रामेश्वर की लीला की। दूसरी बात है नीलायन, आगे चल करके लुका छिपी, लुक लुकी कुंड जहाँ पर लुका छिपी खेल किया था, मर्कटोत प्लवना देवी, शाखा मृग जैसे
कूदना फादना विचित्र प्रकार की लीलाएं और उत्प्लवन, कभी पानी में डूबते हुए एक दूसरों को पकड़ते हुए विचित्र प्रकार की लीलाएं, ऐसे समस्त लीलाएं कृष्ण ने की। ये लगता है कि बहुत दूर है कम्ब या कम्ब वरम, कि नंदगांव बरसाना आदि से ये बहुत दूर कोई ज्यादा दूर नहीं, ये तो सबके संभव होता है कृष्ण लीला में। जब कृष्ण ने नंदगांव से गोचारण करने की इच्छा की आज इधर जाएंगे तो अपने आप धाम संकुचित और विकसित होता है। इतने लाखों गायों को चराया करते थे तो कैसे गायों को लेकर के घूमते थे, इतनी जगह कहाँ है, तो उस समय धाम विस्तार हो जाता है। और जब कृष्ण चाहते हैं कि आज अमुक जगह कम्ब बन जाना है तो साथ ही साथ इच्छा मात्र धाम संकुचित हो करके एक कुछ क्षण में ही अपने निकट लीला स्थान में पहुंच जाते हैं। इस तरह से धाम के संकोच और विकोच होने का बात है। दूसरी बात है कम्मया कम्ब वनम, श्री गोपाल तापनी उपनिषद में कहा है, जहाँ पर कृष्ण के समस्त प्रकार की कामनाएं पूरी हुई है। कृष्ण स्वयं काममय है, इसलिए श्रीमद् भागवत ने राज पंचाध्यायी के प्रारंभ में ही कहा है कि विचरन्तु मनश्चक्रे योग मायाम उपास्थित, उसमें वर्णन आया है कि भगवान अपिता रात्रि, भगवान है कृष्ण चंद्र। वहां पर बताया कि भर्ग श्री काम महात्मे, श्री काम और महात्म, श्री माने सौंदर्य, काम माने प्रेम और महात्मा माने महिमा, लीला संपन्न। इस प्रकार से जो भगवान की जो भगवत्ता अर्थात श्याम सुंदर की जो लीलाएं, सौंदर्य की पराकाष्ठा, बासल रस के निकट में जैसे अपने को प्रकट किए हैं, उससे और भी अधिक देखा जाए तो सखाओं के साथ में पौगंड उम्र में उस समय त्रिभंग ललित हो करके गमन विलास वेणुवादन आदि करते हुए गोचारण में प्रवेश किए, गायों के पीछे पीछे बलराम जी के साथ में चलने लगे। इस प्रकार गोपियों के समक्ष और भी उनके रूप माधुरी सर्वोत्तम रूप से प्रकाशित हुआ है, जो कि इंद्र नील ज्योति कृष्ण कर्णामेश ने कहा है। कितने ज्योति है इसका कोई उदाहरण नहीं हो सकता है, और कितना घनत्व नील, घना नील है इसका भी कोई वर्णन नहीं। इतना ज्योतिर्मय है, बड़ा ही आश्चर्य है कि वह इंद्र नील ज्योति ब्रज में सर्वत्र लीला विलास। हम लोग आते हैं देखते हैं केवल धूल मिट्टी, इसमें उजाड़ी हुई भूमि, ऐसा क्यों? और कृष्ण का जो वर्णन आता है तो बहुत विचित्र वर्णन है। इसमें देखा जाता है कि धाम जो है प्रकट अप्रकट और दृश्यमान तीनों प्रकार से प्रकाशित होते हैं। प्रकट रूप से जब कृष्ण आते हैं तो अपने धाम लीला परिकर सब कुछ प्रकट होते हैं, यहाँ तक कि समस्त देवता लोग उनकी सारी व्यवस्था में लगे रहते हैं, समस्त प्रकार से फलों से फूलों से वृक्षों से हरे भरे चारों ओर से सुसज्जित, किसी प्रकार की तनी भी कमी नहीं। यहाँ तक कि रोमा किरण अभुन नृप, जिस दिन से कृष्ण का जन्म हुआ उसी दिन से यह ब्रज भूमि रमा किरण अभुन नृप, हे राजन लक्ष्मी जी की क्रीड़ा स्थली बन गई। समस्त प्रकार से लक्ष्मी जी इस ब्रज की सेवा करने लगी। इस प्रकार से ब्रज वृंदावन ब्रज भूमि जो है नव किशलय से फूलों से फलों से गायों के द्वारा और गोपियों के द्वारा चारों और साज सज्जा से सुसज्जित थी। इस तरह से हम अब देखते हैं उजाड़े हुए भूमि, जब लीला भूमि अदृश्य हो जाते हम उनको पीछे से जब देखते हैं तब उजाड़े हुए वहाँ पर कुछ नहीं दिखता है, केवल धूल मिट्टी। यहाँ की लीलाएं उन्होंने हमारी आँखों से ओझल कर लिया है, परंतु लीलाएं आज भी हैं, वो नित्य धाम उसी प्रकार से चिन्मय भूमि है। ऐसे ही कृष्ण ने यहाँ पर सेतुबंध रामेश्वर की लीलाएं की हैं, पासी में यह अशोक वाटिका कुछ बगीचे जैसे लंका के अशोक वाटिका का सुंदर मनोरम दृश्य बनाए रखे हैं। यहाँ पर शिव जी की स्थापना भी है, ऐसे देखा जाता है। गोपाल तापनी उपनिषद में भी वर्णन आया है कि ब्रज के स्थान स्थान में ये गोलोक के गोलोक तत्व के अंतर्गत जितने भी देवी देवता ये सब कृष्ण के परिकर बनकर कृष्ण प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए इसी प्रकार विराजमान है। यहाँ जैसे कामेश्वर महादेव, वहाँ हम चलेंगे कल, यहाँ भी ऐसे ही सेतु बंध रामेश्वर के रूप में, जो कि रामस्य ईश्वर रामस्य ईश्वर और रामोच्चासन ईश्वर से थी, इस प्रकार के विवाद में जो शिव जी स्वयं लिंग से प्रकटित होकर के स्वयं ही बताया राम जैसे ईश्वर राम जिनके ईश्वर हैं वो हैं रामेश्वर, अर्थात मेरे भी प्रभु हैं श्री राम। इस तरह से अपने तत्व को व्याख्यान करते हैं, यहाँ प्रेम रस का आस्वादन करते हैं, यहाँ की लीलाओं को स्मरण करते हुए यहाँ के धूल कण को हम प्रणाम करते हैं। यहाँ यही अपना वक्तव्य मैं रखता हूँ। बंसा रूप
किसी समय में गोपियों के साथ में कृष्ण यहाँ पर विराजमान थे, उसमें बहुत ही यहाँ पर सुंदर दृश्य था। एक दिन पहले श्री राम ने कृष्ण को नीचे पटक दिया और उनकी पीठ में धूल लग गई। गोपियों ने सुना जे कृष्ण पराजित हो गए हैं, इसलिए वही प्रसंग आया, कृष्ण अपने बल की दीघाक रहे थे। गोपियों ने कहा श्री राम ने आपको कल जब पछाड़ दिया तो आपको कैसे लगा, आप अपनी पीठ के धूल झाड़ रहे थे ना, और आज तो अपनी बहादुरी बहुत कर रहे हैं। कृष्ण ने मैं तो हारा नहीं, मैंने तो श्री राम को
हरा दिया।
गोपाल ने हाँ आपने हराया जरूर, कैसे हराया, आपकी नाक ऊंची रही और मैंने श्री राम को आपने श्री राम का नाक नीचे कर दिया। कैसे, जो आदमी गिर जाता है तो कृष्ण नीचे गिर गए तो उनकी नाक, मेरी नाक ऊपर रही श्री राम की नाक। वो क्या करेंगे, ऐसे आपने आपकी जीत हुई। कहे नहीं, तुम लोग जानती नहीं है, मैं पूर्व जन्म में राम था, इसके पहले मैं बामन था, उसके भी पहले मैं सूखा भगवान था, पृथ्वी को संपूर्ण को अपने दांत पर धारण किया, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप को मारा, और मैं ही पुल बांध करके रामेश्वर की दर में स्थापना करके और उस पार में जा करके रावण को मारा, तुम लोग तो जानती नहीं है। गोपियों ने कहा जो खूब जानते हैं, जो श्री राम ही यदि आपको परास्त कर दिया तो फिर आप क्या लड़ाई करेंगे। आया अच्छा, तो देखो तुम जो कुछ कहो मैं कर दूं। तुमने कहा अच्छा था ये देखो पानी भरा है ना, हम अभी दिखलाएंगे, यहाँ पर यहाँ से वहाँ तक पानी भरा रहता है, अब तो खैर वो बंद हो गया, तो अभी पानी जब बाढ़ आ जाती है तो पूरा भर जाता है, आप इसको बांध दीजिए और हम इस पार से उस पार चली जाएं तो समझे कि हाँ आप राम थे। बस रामचंद्र जी ने हंसते हुए कृष्ण ने और बंसी बजाई, बंदरों को स्मरण किया, यहाँ तो लाखों कोटी बंदर हैं, देखा ना, सब बंदर यहाँ पर उपस्थित हो गए और उन्होंने उनको आदेश दिया ये पुल बांधना है, बस
पहाड़ तो उधर देखा ना, जहाँ हम लोग गए थे उधर में पहाड़ है। इस तरफ में कोई पहाड़ है? हाँ, जरा दूर है, किंतु यहाँ पर बड़े बड़े हैं। बस जोर से बंदर उछले, भालू उछल गए, सब आ गए। और कृष्ण के इशारे से बहुत दूर दूर से बड़े बड़े पत्थर इस पार से उस पार तक उसको बांध दिया। अभी भी पत्थर आज करीब करीब 5,000 वर्ष हो गए। किसी को क्या गर्ज पड़ा है कि यहाँ से पत्थर ले आए बड़े बड़े और लगाए? इसलिए इसका प्रमाण है। और भागवत में ये बतलाया ना, सेतु बंध नाम है, सेतु बंधन किया इसलिए झट जब वो पुल बंध गया तब गोपियां उसके पार में गईं। और पार होने के बाद में फिर इधर आईं। गोपियों ने कहा कि ये तुम्हारी इसमें कुछ भी शक्ति का परिचय नहीं है, ये तो बंदरों का आपस में साधारण एक खेल था, वो आपकी इसमें कोई शक्ति का इसमें प्रदर्शन नहीं है। गोपियां कभी भी उनकी भगवत्ता पर विश्वास नहीं करती हैं, न कोई भी ब्रजवासी उनको इसी तरह से खेला कराती हैं। तो यहाँ पर जैसे कि वहां पर रामेश्वर की स्थापना हुई थी, सीता जी के द्वारा रामचंद्र जी रामेश्वर की स्थापना थी, उसमें जब मंदिर बन गया तो हुआ जे यहाँ पर प्रतिष्ठा की जाए महादेव जी की, हनुमान जाए और कैलाश से शिवलिंग ले आए। हनुमान जी शिवलिंग करने लेने के लिए गए और इधर में मुहूर्त खत्म होने लग गया, थोड़ा सा मुहूर्त रह गया। रामचंद्र जी ने कहा जब क्या कहा जाए, अब तो मुहूर्त खत्म हो रहा है स्थापना की और हनुमान अभी आया नहीं। उन्होंने कहा जैसे थोड़ा सा बालू ले आओ समुद्र से। सीता जी बालू ले आई और कहा जैसे आप इसका एक गोल पिंड, लंबा सा पिंड शिवलिंग बना दें। बस सीता जी ने उसको बालू का ही शिवलिंग बनाया और रामेश्वर के उस मंदिर में समुद्र के किनारे सीता जी ने स्थापना की बालू का शिवलिंग। थोड़ी देर के बाद ही में हनुमान वो लिंग लेकर के वहां से आए कैलाश से। उनको बड़ा अफसोस हुआ कि मेरे आने के पहले ही ये बालू का शिवलिंग स्थापन कर दिया गया। अब मैंने कहा ये तो उड़ जाएगा हवा में, इसलिए इसको हटा करके जो मैं लाया हूँ उसकी स्थापना कर दी जाए। रामचंद्र जी ने कहा जो अच्छी बात है, तुम इसको साफ कर दो स्थान को और बालू का वहां से जो गिरा हुआ है उसको सब पोंछ पाछ करके साफ कर दो और तुम्हारी लाई हुई जो मूर्ति है उसी की स्थापना यहाँ पर होगी। उन्होंने हाथ से इसको हटाया तो नहीं उठा, बहुत दोनों हाथ लगाया तो भी नहीं उठी। इसके बाद में पूंछ को लपेट कर और उसको उखाड़ना चाहा तो भी नहीं उखड़ी, गिर पड़े समुद्र में हनुमान जी खुद। रामचंद्र जी सोच रहे हैं ये भला देखो तो इसको सीता जी ने स्वयं हमारी योग माया सीता जी जिसको स्थापना कर दें और हनुमान उसको उखाड़ लेगा, ये कभी नहीं हो सकता था। तो हनुमान जी का भी वहां पर गर्व चूर्ण जैसे वो नित्य परिकर हैं, उनको वहां पर गर्व तब नहीं है मानसिक लीला के अनुसार में, नर लीला के अनुसार में। रामचंद्र जी देखा कि हनुमान का मन खराब हो गया, अभी लंका की लड़ाई जीतनी है और ये नहीं यदि प्रसन्न होगा तो लंका की लड़ाई भी नहीं जीती जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा अच्छा तुम एक बात करो, ये पास ही में इसकी स्थापना हो, बस वहां पर जहाँ रामेश्वर है उसके पास ही में हनुमान जी की लाई मूर्ति को उन्होंने स्थापन कर दिया। और बोले यहाँ आकर के पहले हनुमान जी के द्वारा स्थापित जो मूर्ति है उसकी पूजा नहीं करके यदि कोई रामेश्वर जी की ये सीता जी की जो मूर्ति है उसकी पूजा करेगी तो वो पूजा का फल उनको पूरा नहीं मिलेगा। इसलिए सभी लोग जाकर के पहले उसी मूर्ति को पूजा करते हैं फिर रामेश्वर की पूजा करते हैं। पूजा करने के समय में जब पूजा होने लगी रामेश्वर की, तो उस समय में मनुष्य लोग जितने थे उन लोगों ने जय जयकार किया, रामेश्वर महादेव की
जय।
उन लोगों ने अर्थ लगाया रामस्य ईश्वर रामेश्वर, राम के जो ईश्वर है वही रामेश्वर है। तो जो साधारण आदमी है, जो भक्त लोग नहीं है, वो ऐसा ही समझते हैं। विशेष करके अशुभ स्वभाव के जो लोग हैं, वो लोग ऐसा ही समझते हैं कि राम के भी ईश्वर ये रामेश्वर ही है। किंतु बात ऐसी नहीं, देवताओं ने देखा कि ये तो अनिति हो रही है, इसलिए उन लोगों ने कहा रामश्च असौ ईश्वर, राम भी ईश्वर है और ये रामेश्वर जो शंकर जी है ये भी ईश्वर। उन्होंने एक भेदभाव मिटा करके दोनों को ही ईश्वर मान लिया। किंतु शंकर जी यथा वैष्णवानां यथा शंभु, वो यथा शंभु वैष्णव में प्रधान है, तत्वज्ञ है, इसलिए उनकी मूर्ति से वो ऊपर उठाए और बोले कि नहीं, जो लोग कहते हैं कि राम के भी ईश्वर हैं, वो अधिकांश रूप में आसुरिक चित्त वृत्ति के तामसिक वृत्ति के लोग होते हैं, जैसे है रावण कंस मेघनाथ इत्यादि दुर्योधन प्रभृति, ये सब असुर श्रेणी के लोग हैं, वो राम और कृष्ण का ईश्वर शंकर को मान लेते हैं। ये केवल नरलीला में केवल ऐसा दिखलाया गया, और देवलोक में जो देवता हैं वो तत्व निर्णय नहीं कर पाते, ब्रह्मा विष्णु महेश को वो सब एक ही मान लेते हैं देवता लोग, ये तीनों एक ही के रूप हैं। किंतु यथार्थ में जो विष्णु है उनके बीच वाले, उन्हीं से ये ब्रह्मा जी हैं, उन्हीं से भी शिव है, वो दोनों गुणावतार हैं, ये दोनों के ये प्रभु हैं, और इन विष्णु के भी प्रभु हैं गर्भदशाई, और उनके प्रभु हैं कर्णदशाई, उनके प्रभु हैं संकर्षण, उनके प्रभु महासंकर्षण, उनके मूल हैं बलदेव जी, और कृष्ण बलदेव जी के भी मूल हैं। इसलिए कृष्ण और राम से इनकी ये भक्त हैं, और वो प्रभु हैं वो रामचंद्र जी या कृष्ण है। इसलिए सब लोगों को ये तत्व मालूम हुआ और वहाँ पर रामेश्वर की स्थापना की गई।
क्या बोले, ये रह गया सिद्धि प्रकट होकर क्या बोले,
बोले
राम
जस ईश्वर स रामेश्वर, राम ही जिनके ईश्वर है, इस तरह से इस चीज को प्रतिपादित किया। इसलिए राम प्रभु हैं या कृष्ण प्रभु हैं, और शंकर जी उनके दास हैं, यही वैष्णवों की रीति है। भागवत इत्यादि में तुलसीदास इत्यादि जी ने भी इसी रूप में इसका वर्णन किया है। तो यहाँ पर भक्तों ने जब देखा कि वहाँ पर पुल बंधा है, तो उन्होंने यहाँ पर रामेश्वर की स्थापना की, और पीछे से वहाँ पर अशोक वाटिका दिखलाते हैं जहाँ हम लोग आए। होना तो ये चाहिए कि समुद्र के उस पार लंका में होनी चाहिए अशोक वाटिका, तो यह रामेश्वर के पास में पड़ती है। तो भक्त लोग जब आते हैं तो कहीं ना कहीं वो ऐसा कर लेते हैं, उनकी तो भावना प्रधान होती है, इसलिए यहाँ पर इसी पार में ही वो बन गया, और उधर में लंका की लंका है। इस तरह से यहाँ पर अभी शुभानंद जी ने भी बतलाए, जितने भी देवता और जितने भी जो कुछ हैं भगवत अवतार, ये कृष्ण की क्रीड़ा भूमि ब्रज में प्रकट होकर के उनकी आराधना की। तो शंकर जी भी की इच्छा है कि यहाँ पर हम रहें, इसलिए ये भी यहाँ पर रामेश्वर के रूप में यहाँ पर उपस्थित है। अब हम लोग चलेंगे रामेश्वर को देखेंगे जी कैसे रामेश्वर जैसा ही लगता है, और सेतु बंध भी वहाँ पर है, हम लोग देखेंगे। किंतु ये बात ठीक है, लोगों ने विचार किया, बड़े बड़े अनुसंधानकों ने, रिसर्च स्कॉलरों ने, ये यहाँ पर इतने बड़े पत्थर कहाँ से कैसे आए, बिना कारण का क्यों आएगा, तो इसमें कारण जरूर होना चाहिए।
और भागवत इत्यादि में भी उल्लेख है और पुराणों में भी उल्लेख है कि ये सेतु बंध रामेश्वर राम कृष्ण ने ये प्रकट किया था, इसलिए हम लोग इसको सेतु बंध रामेश्वर के रूप में लेंगे। और कृष्ण की ये लीला हुई थी, गोपियों में ने देखा, देख करके विश्वास नहीं किया। यशोदा जी ने कृष्ण के मुख में देखा ब्रह्मांड, कहीं से भूत लग गया, न हमको लग गया, न पिशाच लग गया, विश्वास नहीं किया। अर्जुन ने देखा और हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, तो गोपियां खड़ी हो गई। जब ये लीला दिखलाया, पुल बंद गया, तो गोपियों ने क्या, उनके साथ में और मजाक और हंसी और ये सब करते हुए भगवत्ता को भाव को उड़ा दिया। इस तरह से यहाँ पर सब लीला हुई। अब चलिए हम लोग वहाँ पर दर्शन करके फिर लौट जाए।
हमारा खेता का जो हरण हो चुका था तो